नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
महाराष्ट्र राज्य के प्राकृतिक संपदाओं के वातावरण में स्थित कोल्हापुर शहर सह्याद्री पर्वत एवं पंचगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर कला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भद्रकाली तारा रानी एवं लोक राजा राजर्षि शाहू जी इनके कार्य से पावन बनी ये नगरी अर्वाचीन इतिहास की द्योतक ही नहीं बल्कि भारत की सभ्यता प्राचीन संस्कृति एवं इतिहास का भी धरोहर है। पुराणों के अनुसार मनुष्य के जीवन में एक बार भी काशी यात्रा करने से मनुष्य जन्म सफल हो जाता है और उसे फल प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीनतम समय प्रसिद्ध उत्तर काशी से अगस्त्य मुनि क्रोधित होकर बाहर निकल गए। दुखी मन से पैदल चलते चलते उनका सर चकराने लगा। तब वही बैठकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, आपके वियोग से मैं बहुत व्यथित हूं। अब वापस काशीधाम आना यह अकुशल व्यवहार होगा, तो आप मुझे ऐसी जगह बताइए जहां पर आपका वास्तव्य होगा। भगवान शंकर ने साक्षात्कार दिया और अपने वास्तव्य का जो वर्णन किया वो यही है कोल्हापुर नगरी, जिसे दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इस नगरी को करवीर नगरी भी कहते हैं। ये एक शक्तिपीठ है। इस नगरी में श्री महालक्ष्मी देवी का वास्तव्य है।
नमस्तस्यै नमो नमः
या देवी सर्व
भगवान शंकर, भगवान महाविष्णु, श्री कृष्ण एवं अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों के पदस्पर्श से ये भूमि पावन हुई है। रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर पुराना रजवाड़ा एवं भवानी मंडप के करीब एक विशालकाय सुंदर मनोज्ञेय आतिशयुक्त श्री महालक्ष्मी देवी का मंदिर है।
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस मंदिर का ये मुख्य गर्भगृह जो आप देख रहे हैं, इसे 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया है। इसका विवरण प्राचीन ग्रंथों में भी आता है। आठवें शतक में ये मंदिर भूकंप के कारण जमीन में धस गया। 9वीं शताब्दी में राजा गंडरादित्य ने इस मंदिर का विस्तारण किया। उसी वक्त उन्होंने महाकाली का मंदिर भी बनवाया। 1178 से लेकर 1209 में शिलाहार राजा जयसिंह एवं राजा सिंधु के शासनकाल में यह दक्षिण द्वार बनवाया गया।
लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै।
1218 में यादव घराने के राजा राजा तवलव ने ये पश्चिम द्वार बनवाया।
लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या
12वीं शताब्दी में शिलाहार राजा ने श्री सरस्वती देवी का मंदिर एवं महालक्ष्मी देवी का प्रदक्षिणा मार्ग बनवाया। शिलाहार राजा जैन सांप्रदायिक थे, इसी कारण उन्होंने बुद्धिमान कारागिरों द्वारा इस मंदिर में 64 मूर्तियों को सुंदर रूप प्रदान करने के उद्देश्य से मनमोहक नक्काशी करवाई, जो कि अति सुंदर एवं भव्य रूप में परावर्तित हो गई है, जिसे आज भी देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं। कहा जाता है उसी समय श्री महालक्ष्मी देवी की नई मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई। उस जमाने में श्री महालक्ष्मी देवी को देवी पद्मावती के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद चालुक्य के शासन काल में श्री महालक्ष्मी मंदिर के सामने गणेश जी की स्थापना की गई। 13वीं शताब्दी में शंकराचार्य पीठ की शुरुआत हुई। मंदिर के सामने शहनाई नगाड़ा भी अर्पण किया। मंदिर के सामने विशाल दीप स्तंभ का निर्माण किया।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इस विशाल एवं अनुपम श्री महालक्ष्मी मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। मंदिर की चारों ओर तटबंदी का घेरा है। तटबंदी के चारों दिशाओं में भव्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पश्चिमी दिशा में महाद्वार, उत्तरी दिशा में घाटी द्वार, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में पूर्व द्वार और दक्षिण द्वार। इस मंदिर की रचना हेमाडपंथी शैली में की गई है। मंदिर अत्यंत सुंदर और विलोभनीय है। इस मंदिर का निर्माण सर्वतोभद्र चक्राकार आकार में किया गया है। मंदिर के बाहरी हिस्से की रचना तारांकित स्वरूप की है। इस पर की गई नक्काशी बहुत ही सुंदर है। तामस, सूर, सुंदरी, नर्तकी की मनोहरी मूर्तियां सौंदर्य से परिपूर्ण तथा सचेत लगती है।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय।
मंदिर के इर्द गिर्द छोटे बड़े 35 मंदिर और 25 विभिन्न वस्तुओं की दुकानें हैं। इन छोटे बड़े मंदिरों में 5 प्रमुख मंदिर है। श्री महालक्ष्मी मंदिर को 5 शिखर है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस मुख्य मंदिर को जोड़कर एक सभा मंडप बनवाया गया है। इस मंडप को गरुड़ मंडप कहते हैं। इन सभी मंदिरों की देखभाल पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति द्वारा की जाती है। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए उत्तर द्वार या दक्षिण द्वार का उपयोग किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी का मंडप दिखाई पड़ता है। श्री गणेश जी श्री महालक्ष्मी की ओर मुख किए हुए अर्थात पूर्वाभिमुख बैठे हैं। श्री गणेश जी की प्रदक्षिणा करके पूर्वाभिमुख खड़े रहने पर हमें श्री महालक्ष्मी का मध्य मंडप, उसके बाद मंदिर का गर्भगृह, मूर्ति का चौराह और फिर उसके बाद नयन मनोहर, पवित्र पावन एवं तेजोमय श्री महालक्ष्मी माता के दर्शन होते हैं। इस पावन मूर्ति के एक बार दर्शन कर भक्तगण अपने आप को धन्य मानते हैं। करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी की मूर्ति 3 फीट ऊंची है। ये छोटी सी मैना पंछी के आकार वाली पत्थरी चबूतरे पर खड़ी है। ये मूर्ति रेती में हिरखंड मिश्रित रत्नशिला से बनाई गई है। मूर्ति के भ्रूमध्य पर पद्मरागमणि प्राकृतिक रूप से है। मूर्ति चतुर्भुज है। देवी के दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में ढाल है। नीचे के दाएं हाथ में बिजोरा नींबू और बाएं हाथ में पान पात्र है। देवी के मस्तक पर उत्तराभिमुख योनि और लिंग है। देवी की मूर्ति 5 मुखी सर्प से सुसज्जित है। ये मंगलमय मूर्ति बहुत ही सुंदर एवं चैतन्यदायी लगती है। श्री महालक्ष्मी देवी के नित्य नए स्वरूप में दर्शन होते ही भक्तों के दिलों में भावनात्मक एकता एवं प्रसन्नता जाग उठती है। मूर्ति की आंखें, ओठ, आंखों की भौहें, सभी कुछ अनुपम एवं लावण्यपूर्ण है। 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ये प्रतिमा आज भी सजीव जान पड़ती है। लाखों भक्तगणों की आशा एवं श्रद्धा स्थान रहने वाली ये पावन पवित्र मूर्ति भक्तों की मन्नतों को पूरा करने वाली, भक्तों को दृष्टांत देने वाली है। जब मुगल साम्राज्य में मंदिरों पर आक्रमण बढ़ने लगे, तब सभी मंदिरों की तरह इस मंदिर के पुजारियों ने भी इस मूर्ति का स्थलांतर करवाया। कुछ सालों के बाद करवीर सियासत के पहले छत्रपति संभाजी राजे ने इस मंदिर को आमदनी शुरू की। एक दिन नरहर सांगावकर भट्ट को देवी ने दृष्टांत देकर अपना वास्तव्य कहाँ है ये बताया। नरहर ने संभाजी राजे के पास जाकर देवी के दृष्टांत का वर्णन किया। संभाजी राजे ने तुरंत मूर्ति खोज निकालने का आदेश दिया और उसी के साथ पूरे जोरों शोरों के साथ मूर्ति खोजने की शुरुआत हो गई। मंदिर के महाद्वार के करीब ही कपिल तीर्थ नाम का एक तालाब है, वही के कपिलेश्वर मंदिर के पुजारी के घर पर यह मूर्ति पाई गई। इस मूर्ति की मंदिर में पुनर्स्थापना की गई। मंदिर में आरती, धूपारती, भोग, शहनाई, नगाड़ा, पूजा विधि, कीर्तन, गायन आदि नित्य कार्यक्रम बड़ी धार्मिकता से और मंगलमय वातावरण में किए जाते हैं। श्री महालक्ष्मी के मंदिर के तट पर चार द्वार स्थित है। उत्तरी द्वार पर बहुत बड़ी घंटा बंधी हुई है, इसी कारण इस द्वार को मराठी बोली भाषा में घाटी दरवाजा कहते हैं। ये इतनी बड़ी घंटा 1902 में इंग्लैंड में बनवाई गई है। कोल्हापुर के मशहूर लोक राजा छत्रपति राजर्षि शाहू जी ने इस मंदिर को इसे अर्पित किया, जो आज भी अपने मधुर नाद से इस मंदिर और आसपास के वातावरण को प्रफुल्लित करती है। हर शुक्रवार रात को पूरे जोर शोर के साथ श्री महालक्ष्मी की पालकी निकलती है। हजारों वर्षों से ये पालकी उत्सव आयोजित होता आ रहा है। पालकी के साथ मिट्टी के तेल से जलती हुई बड़ी मशाल रहती है। मशाल की सुर्ख किरणें जब भक्तगणों के बदन पर पड़ती है, तब ऐसा लगता है कि साक्षात जननी महालक्ष्मी भक्तगणों को आशीर्वाद दे रही है। इस पालकी उत्सव की सांगता या समाप्ति लक्ष्मी तोफ के आवाज से होती है। करवीर नगरी में श्री महालक्ष्मी ने कैसे वास्तव्य किया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है।
त्रैलोक के संचारी नारद मुनि देवताओं से वार्तालाप करके ब्रह्म सभा से बाहर आ गए। नारायण नारायण करते करते वो पृथ्वी जगत में आ गए। गंगा किनारे विहार करते करते उनके दृष्टि में कश्यप आदि ऋषियों ने मानव कल्याण के लिए आरंभ किया हुआ महायज्ञ आ गया।
नारायण नारायण।
सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए आइए महर्षि नारद मुनि, इस महायज्ञ स्थान पर आपका आगमन उचित समय हुआ है।
हाँ, नारद मुनि के आगमन से इस महायज्ञ में बड़ी शोभा आएगी।
इस महायज्ञ को आपके आशीर्वाद से मंगलत्व प्राप्त होगा।
नारायण नारायण, कल्याण वस्तु। कश्यप मुनिवर, आपके आरंभ किए हुए इस महायज्ञ को हमारा शुभाशीर्वाद। नारायण नारायण। किंतु मुनिवर, आपने इस महायज्ञ का आरंभ किस कारण किया है?
इस विश्व के कल्याण के लिए एवं सकल मानव जाति के उद्धार के लिए इस महायज्ञ का आयोजन किया है।
मुनिवर, आपने लोक कल्याण के लिए ये महायज्ञ आरंभ किया है, ये निश्चित ही मंगल कार्य है। किंतु इस महायज्ञ का फलभोक्ता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिमूर्ति में से इस महायज्ञ का फल आप किसे देना चाहते हो? नारायण नारायण नारायण।
लेकिन महर्षि, इस प्रकार तो हमने कोई विचार नहीं किया।
आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, आप ही योग्य मार्गदर्शन कीजिए।
नारायण नारायण, बिना सोच विचार महायज्ञ किया तो फल प्राप्ति शून्य होगी। तो मुनिजन हो, आप सोच विचार करें। ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिमूर्तियों में शांत एवं सत्वगुणी ऐसे देव कौन है? ऐसे ही देवता को महायज्ञ का फल आप दीजिए। नारायण नारायण नारायण।
ब्रह्मा विष्णु महेश ये सर्वश्रेष्ठ देवता, विश्व के नियंत्रण करता, पालनहार एवं तारणहार यही त्रिमूर्ति है, और इन महामूर्तियों की कसौटी लेने का सामर्थ्य हम मुनिजनों में नहीं है।
नारायण नारायण। मुनिवर, आप सब मुनिजनों में त्रिकाल ज्ञानी तपोनिधि ऐसे केवल भृगु ऋषि है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से शांत एवं सत्वगुणी कौन है ये देखने और परखने की योग्यता केवल इनमें ही है। नारायण नारायण।
मुनिवर्य,
हाँ, आप निश्चिंत रूप से भृगु महर्षि पर ये कार्य सौंप दे। क्यों भृगु महर्षि?
आप निश्चिंत रहे मुनिवर्य, आपके आज्ञानुसार हम त्वरित इस कार्य का आरंभ करेंगे और त्रिमूर्तियों में से सत्वगुणी कौन है वो खोज निकालेंगे।
कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। महर्षि, आप प्रथमतः ब्रह्मलोक के लिए गमन करें। नारायण नारायण नारायण।
Thank you.
हे विदाता, चार मुख और आठ नेत्र होते हुए भी आप घर आए अतिथि का यथोचित स्वागत नहीं कर सके। आप में सत्वगुण नहीं है। हमारा सत्यलोक में आगमन का प्रयोजन भी आपके समझ में नहीं आया। एक राजा के समान तुम भी रजोगुणी हो। तुमको श्राप देता हूं, श्राप देता हूं, भूलोक पर आपका मंदिर कदापि नहीं होगा। पृथ्वी पर के महायज्ञ का पुण्य फल आपको कैसे अर्पित करें? सदाशिव, अरे सृष्टि का समतोल रखने का कार्य त्याग के आप क्रीड़ा में मग्न है। हम हमारे अनंत कल्प के तपोबल से आपको श्राप देते हैं कि मानव आपका पूजन कदापि नहीं करेगा। आपकी हमेशा लिंग पूजा ही होगी। त्रिकाल ज्ञानी श्रीहरि को हमारे आगमन का भान भी नहीं रहा। अवमान, यहां भी अवमान। महालक्ष्मी के सहवास में श्रीहरि इतने उन्मत्त हो गए? नहीं, सहा नहीं जाता, ये सहा नहीं जाता। श्रीहरि, 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 श्रीहरि,
स्वागतम मुनिवरिया। मुनिवरिया क्षमा कीजिए, वैकुंठ का सर्वोच्च आसन ग्रहण कीजिए। मुनिवरिया, मुझे जागृत करने के लिए आपको लत्ता प्रहार करना पड़ा। हमने परिधान किए सुवर्ण अलंकारों से, आपके चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ ना? मैं आपके पैर दबाता हूं।
हमारे आगमन का हेतु आपके समझ में आया श्री हरि। पुण्यशील भगवान क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। इसी ज्ञान चक्षु के कारण मेरा अहंकार बढ़ गया था प्रभु, मेरे हाथों मर्यादा का भंग हो गया प्रभु। दयालु प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु क्षमा कीजिए।
भगवान विष्णु ने भृगु मुनि का चरण नेत्र फोड़ दिया। उसके साथ ही भृगु मुनि का सब अहंकार सब गर्व नष्ट हो गया। उन्होंने श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान हमारा वैकुंठ आगमन हेतु सफल हो गया। पृथ्वी पर हो रहे महायज्ञ का फल विष्णु के रूप से जनकल्याणार्थ काम आएगा। ऐसा कहते हुए श्री विष्णु जी का आशीर्वाद लेकर भृगु मुनि भूलोक पर आ गए।
अपनी ममता जागृत करते हुए आप भृगु मुनि को क्षमा कर दीजिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं नाथ। भृगु मुनि को तात्काल शासन कीजिए। जिस जगह महालक्ष्मी का वास है उसी वक्षस्थल पर मुनि ने लट्ठा प्रहार किया।
ये तो महामाया की लीला है देवी, आप केवल क्षमाशील हो जाइए।
नहीं नाथ, आप तात्काल शापवाणी दीजिए।
नहीं देवी, आप भृगु मुनि को क्षमा कीजिए।
नाथ, अगर आपके निर्णय पर आप दृढ़ है तो यह महालक्ष्मी क्रोधित होकर इस वैकुंठ का त्याग करती है।
लक्ष्मी?
नहीं नाथ, जिस कारण लक्ष्मी नारायण का विच्छेद हो रहा है उस ब्राह्मण वर्ण को मेरा शाप है। उनका ब्राह्मण्य सदैव लक्ष्मी ही नहीं रहेगा, परम दारिद्र्य ही उनके प्रारब्ध में सदैव रहेगा। विद्या विक्रय करके ब्राह्मण को जीवन रस प्राप्त होगा।
लक्ष्मी
प्रणाम स्वीकार कीजिए। नाथ, आपकी यह लक्ष्मी वैकुंठ का त्याग कर रही है।
लक्ष्मी,
श्री महालक्ष्मी ने वैकुंठ त्यागने का फैसला किया और वैकुंठ त्याग कर महालक्ष्मी भूलोक आई। भूलोक पर आते ही उन्होंने तपश्चर्या प्रारंभ की। जिस भूमि पर स्वयं श्री महालक्ष्मी ने तपश्चर्या की वो भूमि यानी करवीर नगरी अर्थात कोल्हापुर।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते।
Yeah।
नौ रातें जाग कर दुनिया को संकटों से मुक्ति दिलाने वाली ये देवी भक्तजनों को विविध रूपों में दिखती है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर को जमी से लेकर शिखर तक रंग बिरंगी विद्युत रोशनाई में सजाया जाता है। नवरात्र के पहले दिन मंत्रों के अनुष्ठान से नवरात्रों का आरंभ होता है। नवरात्र के पहले दिन देवी की बैठे रूप में पूजा की जाती है। शंख और नरसिंहों के निनाद के साथ नवरात्रोत्सव की शुरुआत होती है। हे जगत मातर जगत माऊली दुर्गा देवी, तू ही हम भक्तों का उद्धार करने वाली है, तू ही विश्व की पालनहार है। हे देवी माँ, हमें हर संकटों से मुक्ति दिला, हमें दर्शन देकर हमारा जीवन सफल कर, ऐसी प्रार्थना भक्तजन करते हैं। रात के समय विविध रंगों के फूलों से सजाई हुई पालकी ढोल ताशों के निनाद से निकलती है। अंबे मात का जयघोष करके सभी भक्त पालकी पर फूलों का वर्षाव करते हैं।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः।
ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै
नमो नमः। ओम धनप्रदाय
राम नौका विहार पौराणिक ग्रंथों की कथाओं के आधार पर ये पूजा की जाती है। रामायण एवं महाभारत की कथाओं पर आधारित देवी की विविध रंग रूप में पूजा की जाती है। वनवास गए प्रभु रामचंद्र के साथ सीता माई के नौका विहार के प्रसंग पर आधारित मनोहरी पूजा भक्तों को एक अलग ही चेतना देती है। वनवास जैसे कटु एवं कठिन प्रसंग पर भी सत्य धर्म एवं पुण्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जग दाता है फिर वनवास कैसा, यही सीख इस प्रसंग से मिलती है। प्रभु रामचंद्र एवं माता जानकी को इस अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति और प्रेरणा यही देवी देती है। नवरात्र उत्सव में अपने पति बालाजी की तरह महालक्ष्मी को भी विभिन्न अलंकारों से सजाया जाता है। ये सालंकृत पूजा सुंदर मनोज्ञ अद्वितीय एवं प्रसन्न लगती है। मांगल्य पवित्रता प्रसन्नचित और कृतार्थता, इन सभी गुणों का संगम यानी देवी महालक्ष्मी। इस देवी के विभिन्न रूपों का दर्शन करने के लिए भक्तगण महाराष्ट्र एवं देश के विभिन्न अंगों से आते हैं। उस वक्त संपूर्ण कोल्हापुर शहर नवरात्रमय हो जाता है। महाराष्ट्र के संतों ने परोपकार, सद्भावना, ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा दी। संतों के उपदेश से महाराष्ट्र राज्य आज भी एकात्मता की भावना रखता है। श्री विठोबा के रूप में श्री महालक्ष्मी की पूजा महाराष्ट्र राज्य के संत परंपराओं का प्रतीक दिखती है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत चोखोबा, मुक्ताबाई जैसे अनेक संतों को अपने कंधे पर एवं पूरे बदन पर बिठाकर भजन में तल्लीन होकर नृत्य करने वाले श्री विठोबा स्वयं प्रकट होते हैं और संतों का ये मेला साकार करने वाले विठल के रूप में श्री महालक्ष्मी प्रकट होती है। राजलक्ष्मी अर्थात अंबारी पूजा। आज भी श्री महालक्ष्मी राजलक्ष्मी बनकर अपनी बहन को मिलने त्रंबोली जाती है। त्रंबोली जिसे टेम्बलाबाई के नाम से भी जाना जाता है। Thank you. यह श्री महालक्ष्मी की बहन है। श्री महालक्ष्मी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर त्रंबोली अर्थात टेमलाबाई का मंदिर है। सदा कुवारी रहने वाली इस बहन को मिलने के लिए पालकी में विराजमान होकर अपने भक्तगणों एवं पुजारियों के समवेत श्री महालक्ष्मी निकलती है। श्री महालक्ष्मी की पालकी मंदिर से निकलते ही फूलों की वर्षा की शुरुआत होती है। इस पालकी के साथ हजारों भक्तगण पैदल चलते हैं। दोपहर की कड़ी धूप में कुवारी लड़की के हाथों से सफेद कुमड़ा फोड़कर उसका भोग त्रंबोली देवी को चढ़ाया जाता है। त्रंबोली देवी कुवारी होने के कारण गर्भगृह तक कुवारी लड़की ही जाती है। श्री महालक्ष्मी देवी श्री त्रंबोली देवी के गले मिलती है। उसके बाद भगनी रोटी का उत्सव होता है। ये देखने के लिए बहुत ही भीड़ उमड़ पड़ती है। देवी का प्रसाद पाने के लिए भक्तगण टूट पड़ते हैं। धरती गगन के मिलन का ये मंगलमय लम्हा दिल के कोने के अंदर समाया जाता है। कमल रूपी सालंकृत धनलक्ष्मी कमल पुष्प में विराजमान होती है। शंख चक्र गदाधारी श्री महालक्ष्मी की हर घर में पूजा की जाती है। धान्य संपदा दे सुख शांति दे तू दे चित्त स्वरूप आनंद ऐसी प्रार्थना मनोभावे की जाती है। मूर्ति के मुख पर अचल ध्यान मुद्रा शिशु मुग्धता के समान ऐसे झलकती है कि बस इसी को निहारने का दिल करता है। श्री महालक्ष्मी कमल पुष्प में विराजमान होकर चैतन्य रूप में पालकी में बैठकर प्रदक्षिणा के लिए बाहर निकलती है। पालकीधारी जगदम्ब जगदम्ब का जय घोष करते हैं। अपनी जिंदगी में भक्ति और शक्ति का तेजोमय सूरज निकलने दो, जिंदगी के जीने का सार्थक हो जाए, ऐसी मिन्नतें करते हुए ये भक्तगण महालक्ष्मी के चरणों में लीन होते हैं। दत्तरूपी पूजा कोल्हापुर और अवधूत चिंतन गुरु दत्तात्रेय का बहुत ही गहरा रिश्ता है। श्री गुरु दत्तात्रेय अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का त्रैलोक्य रूप, पृथ्वी की उत्पत्ति स्थिति एवं लय को सफल करने वाले इस ब्रह्म चैतन्य को भिक्षा देने वाली ये जगन्माता हम सबकी रक्षा करती है। जब भूलोक पर असुरों ने आतंक मचाना शुरू किया, जब वे प्रजा के साथ अघोरी कर्म करने लगे, तब महालक्ष्मी ने महिषासुर मर्दिनी बनकर इन असुरों का अंत किया। असुरों की शक्ति को अपने अद्भुत पराक्रम से लड़कर झुका देने वाली ये उग्र चंडिका महिषासुर मर्दिनी। स्त्री जाति को जब गुस्सा आता है तब वो कैसे अंगार बरसाती है, इसका ये विराट रूप महिषासुर के अन्यायी एवं अघोरी कर्मों के प्रवाह का अंत करने के लिए उसे खींच कर रौंद देने वाली रणचंडिका, परशुमाला गर्त चक्र जैसे आयुधों से लड़ने वाली ये देवी रौद्र रूप धारण करके रण संग्राम में उतर आई और महिषासुर कोल्हासुर जैसे असुरों का सर्वनाश कर दिया। चंद्र रूप काया जैसी शीतल रहने वाली इस देवी ने महिषासुर से लड़ते हुए अग्नि वर्षाव कर दिया। शेर के पीठ पर बैठकर दैत्यों से टक्कर देने वाली ये बिजली रणांगण में कड़ाड़ते ही स्वर्गलोक में देवताओं का आसन भी हिल गया। इसी रौद्र रूप का साक्षात्कार इस पूजा में होता है। देवी के इस रूप का दर्शन करने के लिए हजारों भक्तगण इकट्ठा होते हैं। विजयादशमी असुरों के अंत के बाद विजय का दिन अर्थात विजयादशमी। अंबे माता अपने रथ में बैठकर बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। सीमोल्लंघन अर्थात दशहरे का दिन। पालकी पूरी तरह से सज धज कर मंदिर से निकलती है। इस उत्सव में हजारों भक्तगण शामिल होते हैं। दशहरे को मराठी भाषा में दसरा कहते हैं। पाल की ऐतिहासिक दशहरा चौक में आती है। राजर्षि शाहू जी ने सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाकर सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा कर दशहरे के दिन सोना बांटने के लिए एक खास मैदान बनवाया, जिसे आज दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है। आज भी राजर्षि शाहू जी के वंशज करवीर संस्थान के अधिपति के हाथों ही सोना लुटाया जाता है। प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए राजे अपनी पारंपरिक भेष में खास सजाई हुई गाड़ी में आते हैं। दशहरे के दिन बांटे जाने वाले कचनार के पत्तों की टहनियों की आरती और पूजा करके सोना लुटाया जाता है। सोना लुटने के बाद इसे हासिल करने के लिए पूरा जनसागर कचनार पत्तों पर टूट पड़ता है और इसी तरह नवरात्र उत्सव की समाप्ति होती है।
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो